नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में कल रात एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में 400 लोग मारे गए और करीब 250 घायल हो गए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तानी हवाई हमले में अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया है और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैन्य शासन ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और काबुल में एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिष्ठान ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान द्वारा अहमदियों पर किए गए क्रूर दमन या रमजान के दौरान अफगानिस्तान पर हवाई बमबारी की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान अपने पड़ोस में इस्लाम विरोधी भावना यानी इस्लामोफोबिया की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने में बहुत निपुण हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक सहयोग संगठन को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की सुनियोजित कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रसेल्स की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेन तथा यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काया कल्लास से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने यूरोपीय संघ के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की और साझा हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रमुखता से चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समझौते से न केवल इसकी अपार आर्थिक क्षमता का मार्ग प्रशस्त होगा बल्कि दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी का महत्व भी रेखांकित होगा। अमेरिका ने क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ लगभग 57 अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते किए हैं। इन समझौतों को जापान में आयोजित पहले हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा मंत्री जैक बर्गन ने कहा कि यह पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी देशों की ऊर्जा निर्यात बढ़ाने और अनिश्चित या राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्रोतों पर उनके निर्भरता को कम करने की नीति का हिस्सा है। भारतीय पोत नंदा देवी लगभग 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पर पहुंच गया है। ये पोत कतर से रवाना हुआ था और होर्मुज जल डमरू मध्य होते हुए भारत पहुंचा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंदरगाह पर एलपीजी उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल एक और एलपीजी वाहक पोत मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा था। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से रवाना होने वाला भारतीय ध्वज वाला जहाज जग लाडकी भारत के रास्ते पर है।
इंडियन फ्लैग वेसल जग लाडकी,
भारतीय ध्वज वाहक जहाज जग लाडकी जो 14 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात से रवाना हुआ था, लगभग 81,000 टन मुरबान कच्चे तेल के साथ भारत की ओर सुरक्षित यात्रा कर रहा है। जहाज पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचेगा
टुमारो एट मुंद्रा पोर्ट।
पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। सख्त निगरानी के लिए आधुनिकतम तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार 100% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग अनिवार्य होगी। राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार निगरानी और अवलोकन के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें जबरन धोखाधड़ी प्रलोभन के जरिए या विवाह के दौरान धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के अनुसार विवाह के बहाने गैरकानूनी धर्मांतरण में शामिल लोगों को 7 साल की कारावास और 1,00,000 रूपये का जुर्माना हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण के लिए 7 साल का कारावास और 5,00,000 रूपये का जुर्माना होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक आज दोपहर में 0.1% की गिरावट के साथ कार्य कर रहे थे। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 57 अंक गिरकर 75,445 जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 23,385 पर था। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा फ्रांस के पैलेस रेस स्पोर्ट्स में शुरू हो रहे ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत की चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।